Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tau Tattvam Na Janami. Kedrushosi Maheshwara, Yadrushosi Mahadeva, Tadrushaya Namo Nama. Yo Asau, Soham Yajab, Om Shanti, Om Tat Sat Brahmane Nama. Jagratadi Trihunmuktam Jagratadi Mayam Tatha Aumkareksu Samvedyam Yatpadam Tannamamyaham. Mandukya Upanishad ke 12 mantra, unka sadharan paath aur unke सीधे सीधे अर्थों पर भी थोड़ा कल विचार किया था. इसमें कुल 12 मंत्र हैं और इन मंत्रों का सार ये है कि जीवन में हमें सत्य को ढूंढने के लिए अपने ही दैनिक जीवन पर गंभीरता से विचार करना होगा. संसार की कोई भी चीज हो या परमार्थ की कोई हो, उपनिषद का कहना है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं, स्वर्ग या नरक, सुख दुख, ब्रह्म ईश्वर, वो सब मिलेगा स्वयं पर दृष्टि केंद्रित करने से. अपने पर जब हम ध्यान को आकर्षित करते हैं और ध्यान से उसका विश्लेषण करते हैं तो हमें रास्ता मिलता है संश्लेषण का, एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर, विभिन्नता से एकता की ओर, विविधता से एक तत्व की ओर. अर्थात व्यवहार और परमार्थ, अगर हम ये दो चीजें स्वीकार करेंगे कि व्यवहार कुछ और चीज है और परमार्थ कोई दूसरी चीज है, तो फिर तो द्वैत हमने शुरू से ही स्वीकार कर लिया. अद्वैत की प्रपत्ति तो होगी ही नहीं, अद्वैत तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ये मानकर चले कि व्यवहार अलग चीज है और परमार्थ अलग चीज है. तो जहां कहीं द्वैत होगा वहां अशांति होगी, वहां परेशानियां होंगी. जहां भी द्वैत होगा वहां ही सभी उपद्रव होते हैं, उपद्रवों का उपशम, उपद्रवों की शांति अद्वैत में है. इसलिए व्यवहार को अलग स्वीकार करना और परमार्थ को अलग स्वीकार करना ये उपनिषदों का चिंतन नहीं है. समझने समझाने के लिए बातें करते हैं कि ये शरीर है, शरीर के भी पांच कोश बना देंगे, पांच कोश के भी सात अंग बना देंगे, 19 मुख बना देंगे, जैसे कल के मंत्रों में आपने देखा। लेकिन वास्तविकता ये है कि शरीर और आत्मा कोई अलग चीज नहीं। अगर इन दो को अलग मान के चलेंगे, ये अंतम चिंतन है जहां आप पहुंचेंगे कि शरीर और आत्मा अलग नहीं है, आत्मा की ही एक अभिव्यक्ति है। आत्मा अपने आप को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करता है, अनेक रूप है, जिसमें एक रूप ये शरीर भी है, मनुष्य शरीर भी है, बाकी पशु पक्षी कीट पतंग नवचर जलचर थलचर वो सब शरीर ही, और उन सब में आत्मा की ही अभिव्यक्ति है, किसी और चीज की नहीं। एक ही तत्व विभिन्न रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा, वो एक ही तत्व है। इस बात को ठीक से समझने के लिए इस उपनिषद में ओंकार को प्रतीक रूप में लिया गया, ओम का सहारा लिया गया कि ओम ही एक ऐसा छोटा शब्द है कि इसी का चिंतन, इसी का ध्यान, इसी का श्रवण, इसी का मनन और इसी का निधिध्यासन हमें मूल तत्व तक पहुंचा देगा। इसके प्रथम मंत्र में ये बात कही गई है कि ओम ही सब कुछ है, जो कुछ भी आपको दिखलाई दे रहा है, इदम सर्वम, जो कुछ भी इदम के रूप में दिखलाई दे रहा है वो ओम ही है। फिर साथ में ही दूसरी श्रुति में दूसरे मंत्र में कह दिया कि सब ब्रह्म ही है, और साथ में ये भी कह दिया कि आयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। इसका अर्थ ये है कि ओम ब्रह्म और आत्मा ये तीनों एक ही है, अर्थात ओम एक प्रतीक है जिसके माध्यम से हम अमूर्त को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आत्मा का कोई वजूद नहीं है, आत्मा की कोई शक्ल सूरत नहीं है, इसलिए उस तत्व तक पहुंचने के लिए एक कल्पना की गई। आप ऐसा ही समझ लो कि जैसे मैथमेटिक्स में, गणित में कोई सवाल निकालना हो तो पहले वो करते हैं कि फर्ज करो ये इसकी कीमत 100 है, तो वो फर्ज करना अर्थात सही हल तक पहुंचने के लिए पहले एक कल्पना करनी पड़ती, इसको हाइपोथेसिस कहते। एक बात को स्वीकार कर लो दृढ़ता से, फिर उसके इर्द गिर्द चलते हुए हम सत्य तक पहुंच जाएं। ऐसा ही इसमें भी आप ये समझ लें कि ओम को लेकर प्रतीक के रूप में पहुंचना सत्य तक है। फिर इसी में ही आपने जिसका तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र, पांचवा मंत्र, इनमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं का वर्णन किया गया। ये बतलाया गया कि उन दिन भर में हर एक के अनुभव में आने वाली ये तीन अवस्थाएं हैं, या हम जाग रहे हैं, या हम सो रहे हैं, या हम स्वप्न देख रहे हैं, इनके अतिरिक्त और कोई अवस्था नहीं है। लेकिन ये जागना, ये सोना और ये स्वप्न देखना, ये मूल तत्व जिसको हम कहते हैं, आत्मा जिसको हम कहते हैं, या शुद्ध चेतन जिसको कहते हैं, ये उसका काम नहीं है। आत्मा न सोता है, न जागता है, न स्वप्न देखता है। आत्मा केवल इनको सत्ता प्रदान करता है, ये काम अंतःकरण के हैं। यहां पर ये बात बतलाई गई है कि अंतःकरण एक चेतना का वो हिस्सा है जो परिच्छिन्न हो गया। परिच्छिन्न का मतलब है जैसे अथाह जल है और हमने एक कटोरी में जल भर लिया, तो जल इतना ही नहीं है जितना कटोरी में आया, जल तो बहुत है लेकिन कटोरी में उतना सा आ गया। तो हमारे अंतःकरण में जितना सा चेतन आ जाए, अंतःकरण हमारा जो है चेतन एक ऐसा शब्द है या चेतन एक ऐसा तत्व है कि वो किसी की पकड़ में आता नहीं, ना अंतःकरण में आता है ना किसी में आता है। ये अंतःकरण भी चेतन में कल्पित है, असली बात तो ये आएगी कि अंतःकरण भी उसमें कल्पित है, इसलिए इसका विलय उसी में ही हो जाना है। जब अंतःकरण नहीं रहेगा तो चेतन ही चेतन रह जाएगा। जब तक अंतःकरण है तब तक हम मूल चेतन से थोड़ा अलग हुए हुए, ये परेशानी है जीव की या सभी उनकी, उस परम चेतन की अभिव्यक्तियों की ये परेशानी है कि वो अपने आप को उस चेतन से अलग समझ बैठते। तो इसके लिए उन्होंने ये बात बतला दी इन मंत्रों में कि ये जो अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जिनका आप अनुभव करते रहते हो, इन्हीं को फिर उन्होंने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के रूप में भी बतलाया, इन्हीं में पंच कोशों के रूप में भी ये बतलाया। फिर जागृत अवस्था क्या है ये जैसे कल आपने देखा, जागृत अवस्था वो है जिसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों ही काम करते हैं, तीनों के तीनों शरीर जिसमें काम करे वो जागृत अवस्था, या जिसमें पांचों के पांचों कोश काम करते रहे, अन्न में भी, प्राण में भी, मनोमय भी, विज्ञान में भी, आनंद में भी, तो वो जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में कल जो संक्षेप में उसके अर्थ पढ़े उसमें आपने ये देखा कि जागृत अवस्था में उन्होंने 19 मुख और 7 अंग बतलाए। को यहां पर मुख्य बात यह है जो विवेक इसमें किया गया है, विवेक इसमें यह है कि आप स्वप्न का जो विवेक करो, स्वप्न में जो कुछ भी आप देखते हो, जो कुछ भी स्वप्न में आप देखते हो या करते हो, जितना कुछ भी, वो स्वप्न में कोई चीज बाहर से तो आई नहीं है, ना तो ये पृथ्वी है, ना ही ये चांद है, ना ही ये सूरज है, ना ही ये सितारे हैं, कोई भी नहीं। स्वप्न में मुख्य रूप से तीन बातें होती हैं। एक को कहते हैं स्वप्न पुरुष, एक को कहते हैं स्वप्न का अभिमानी, और एक को कहते हैं स्वप्न का दृष्टा। जो हम स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न में हम भी दौड़े जा रहे हैं, और भी बहुत से लोग हैं, मैं भी उसमें, और मैं भी उनके साथ नहा रहा हूं या खेल रहा हूं या लड़ रहा हूं या रो रहा हूं, मेरे जो कुछ भी करो, तो ये जो स्वप्न में मैं भी बना हुआ हूं उसको तो स्वप्न पुरुष कहते हैं। और जागने पर जिसको ये याद रहता है कि मैंने स्वप्न में ये देखा, उसको स्वप्न का अभिमानी कहते हैं। देखो, स्वप्न का अभिमानी और स्वप्न पुरुष ये अलग है जागृत के अभिमानी और जागृत के पुरुष से, लेकिन दृष्टा दोनों का एक ही रहेगा, जागृत का भी और स्वप्न का भी और सुषुप्ति का। तो ये पारिभाषिक शब्द है अभिमानी, स्वप्न पुरुष, क्योंकि अभिमानी का यहां पर अर्थ वो नहीं है जो आम तौर पर हम करते हैं कि उसको बड़ा घमंड है, उसको हम कहते बड़ा मान करता है, बहुत अभिमानी है, ऐसा ऐसा, इन शब्दों का हम प्रयोग करते। अभिमानी का अर्थ होता है जो अपने आप को मान तो ले लेकिन हो कुछ ना, खाली उसने मान लिया है कि यह है, वास्तविकता वो है नहीं। एक व्यक्ति साधारण है, कोई भी कोई काम कर रहे, छोटी सी दुकान है उसकी, वही व्यक्ति एमएलए बन गया, फिर वो मंत्री बन गया, तो उसको शास्त्र की भाषा में कहेंगे ये मंत्री का अभिमान है, उसको वास्तविक वो है नहीं, आदमी तो वही है जो था पहले, लेकिन उसने इसको मान लिया है कि मैं मंत्री हूं, कुछ दिनों बाद फिर वो खत्म हो जाएगा तो वैसे का वैसे। तो अभिमान शब्द का अर्थ होता है अपने ऊपर आरोपित कर लेना, जैसे हम बोलने में कहेंगे मैंने स्वप्न देखा, लेकिन जो दृष्टा है वो ना तो स्वप्न देखता है क्योंकि उसमें कोई क्रिया नहीं है, शुद्ध चेतन तो ना कुछ देखेगा ना सुनेगा ना करेगा, वो तो त्रुय तत्व है जहां तक पहुंचना है, लेकिन उसको समझाने के लिए ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति का सहारा लिया गया है इस ग्रंथ में। इसको संक्षेप में मैं थोड़ा उसका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि हमें एक एक को लेकर विस्तार से इन्हीं बातों का ही उल्लेख करना है। तो ये जो जागृत के समय इस उपनिषद में उन्होंने ये बतलाया कि जागृत का स्वरूप क्या है, जागृत के स्वरूप में उन्होंने ये बात बतलाई कि बहिर्मुखता, प्रज्ञा बहिर्मुखी होती है, सात उसके अंग होते हैं और 19 उसके मुख होते हैं, ऐसा उन्होंने जागृत अवस्था का वर्णन करते हुए ये बात बतलाई। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि जैसे स्वप्न में, देखो स्वप्न में आकाश, पर्वत, समुद्र, ये सब कुछ आपका अपना ही विस्तार है, इसको आत्मविलास कहते हैं, आत्मा का ही विलास। तो इसमें एक कल्पना है, अपने आप बैठ के ये एक ध्यान है, एक विचार, विचार ये है कि आप इतने ही नहीं हो जितना अपने आप को समझ रहे, इस शरीर तक ही आप कैद नहीं, क्योंकि स्वप्न में ये झलक आपको मिल जाती है कि ये शरीर भी उसी में ही दौड़ रहा है। और देखो स्वप्न में ये आप वाला शरीर भी स्वप्न का एक अंग सा बना हुआ है, वास्तविकता ये है कि इसकी क्रिएशन, इसको बनाया भी आपने ही है, कहीं बाहर से नहीं बन के आया हुआ। तो इसी को ये आत्मा में कल्पित है ये शरीर, ऐसा मान लो, कल जैसे समुद्र में तरंगे होती हैं, बुदबुदे से होते हैं, बड़ी लहरें भी होती हैं, ऐसे ही परम चेतन में ये आपका एक शरीर भी कल्पित है, और भी है लेकिन ये शरीर भी कल्पित है। और वो परम चेतन क्या है, उसका मूर्धा तो ध्याउ है, अर्थात जो सात अंग बतलाए उन्होंने कि उसका मस्तिष्क तो आकाश से भी ऊपर की जगह, ध्याउ उसका मस्तिष्क है, पृथ्वी उसके पैर है, आकाश उसका बीच का हिस्सा है, जितना भी जल है ये उसका मूत्र स्थान है, अग्नि उसका मुख है, ऐसा सात अंग उन्होंने बतलाए। तो इसमें ये किसका है ध्याउ, किसका सिर है, अर्थात आत्मा का ही विस्तार, आत्मा कितना लंबा चौड़ा है ये उसकी एक कल्पना, और आत्मा आपका ही असली स्वरूप है, इसलिए मेरा ही ये विस्तार है, ऐसी एक कल्पना। ये कल्पना स्वयं में ही करनी होती है बैठकर कि मैं इतना सा ही नहीं हूं, अपना फैलाव देखो, जहां तक भी आपकी वृत्तियां काम कर सकती हैं, जहां तक भी आप सोच सकते हैं, जितना जितना आप फैलते चले जाएंगे, विस्तार करेंगे अपना, उतना उतना ये सारी दुनिया अपनी ही बनती चली जाएगी कि ये मेरी ही है, मेरा ही विस्तार, मेरे से अलग कुछ नहीं। और जितना जितना हम अपने को संकुचित करते चले जाएंगे उतना उतना हम संसार से अलग होकर समझ लो के अज्ञान में चले जाएंगे। अलग हो तो नहीं सकते, लेकिन हम मानते हैं कि हम उससे अलग हो गए। इसमें कोई किसी से अलग, क्योंकि आत्मा से अलग कौन होगा, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जब ये सिद्धांत ही अटल है तो इससे अलग कोई नहीं, लेकिन हम जो मान लेते हैं अपने आप को वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो इस परिच्छिन्नता से कैसे छूटे, इसके लिए उन्होंने 7 अंग और 19 मुख बतला दिए आप कि अपने ही मेरे, ये अपना ही विस्तार है। जैसे स्वप्न आपका अपना विस्तार है, शास्त्र ये कहता है कि जागृत भी आपका ही विस्तार है। जैसे नींद में जाकर न स्वप्न रहेगा न जागृत की स्थिति रहे, नींद में दोनों बराबर हो जाएंगे। जागृत और स्वप्न में क्या फर्क है? या तो ये हो कि नींद में जागृत वाली चीजें आपके पास रहती हैं और स्वप्न वाली खत्म हो गई, तब तो ये मान ले कि जागृत में और नींद स्वप्न में कोई फर्क है। वास्तविकता ये है कि जहां ही हम उस नींद में पहुंचते हैं ना जागृत की कोई चीज हमारे पास रहती है ना स्वप्न की रहती, दोनों की दोनों खत्म हो गई। और जब हम जाग रहे होते हैं उस समय हमारी बाहर मुखता का ये सारा विस्तार है, और जिस समय स्वप्न देख रहे होते हैं तो अंतर मुखता का विस्तार। जागृत और स्वप्न में फर्क सिर्फ बाहर मुक्ता और अंतर मुक्ता का ही है, वास्तविकता अवास्तविकता का नहीं। दोनों ही अवास्तविक है, क्योंकि वास्तविक तो परम तत्व ही है, उसके अतिरिक्त और कोई सत्य है नहीं। परम सत्य वही है और वही सत्य है, बाकी सब उस सत्य पर कल्पित है जो कुछ भी। तो यहां पर स्वप्न और जागृत दोनों में देखो, जब जाग रहे होते हैं आप तो उस समय आपका ये अन्नमय शरीर, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय सारे काम कर रहे थे। जब आप सो जाते हैं तो अन्नमय कोश काम नहीं करता, ये आंखें बंद होती हैं ये वैसे, लेकिन प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय वो चल रहे, नहीं तो स्वप्न नहीं देख पाएंगे। प्राण में भी चल रहा है, अंदर सारी क्रियाएं हो रही हैं, जो हम खाना खाया है वो पच रहा है, उसका रक्त बन रहा है, वो सब काम हो रहे हैं। जो जागते हुए होते हैं वो सोते हुए भी हो रहे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है उन कामों में। तो इस तरह से जागने में तो ये ऐसा ही मान लो कि ये पांचों कोष काम कर रहे हैं। जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो अन्न में उसमें काम नहीं कर रहा, बाकी चल रहे हैं। और जब सुषुप्ति में होते हैं हम तो केवल प्राणमय और आनंदमय को उस काम कर रहे होते हैं, मनोमय भी उसमें सो जाता। फर्क केवल इनका ही है, बाकी जागृत में और स्वप्न में कोई अंतर नहीं। ये बात इन्होंने अपने इन श्लोकों के माध्यम से, जिनका हमने कल थोड़ा जल्दी जल्दी में पाठ करके अर्थ किए, उनका अर्थ आपको फिर संक्षेप से समझाया है, क्योंकि इसके बाद हम किसी एक बात को लेकर, जागृत को लेकर फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर स्वप्न का करेंगे और फिर सुषुप्ति का, जितना भी समय मिलेगा। वस्तुतः ये सारे विषय स्वाध्याय के होते, इसमें एक एक बात को लेकर महीनों निकल जाते हैं, क्योंकि इनको ठीक से समझने के लिए पंचकोश भी इसी में आ जाएंगे, तीनों अवस्थाएं भी इसमें आ जाएंगे, पंचीकरण और अपंचीकरण भी इसमें ही आ जाएगा कि अंतःकरण कैसे बना, इंद्रियां कैसे बनी, विषय कैसे बने, ये काम कैसे करते हैं सब विषय। तो वो सारा वेदांत जिनकी प्रक्रिया है इन छोटे से 2 श्लोकों में ही चली आती। इन सब को ठीक से समझने के लिए, या तो जिन्होंने समझा तो है, कई बार सुना समझा, और जिनके ध्यान में है उनके लिए तो ये कोई समस्या नहीं, लेकिन एकदम ये बातें इतनी जल्दी से हमें समझ में आ जाए, क्योंकि ये देखो ये बात इससे कोई भी इनकार नहीं करेगा अगर ये पूछा जाए कि आप स्वप्न में और जागृत में अंतर करके बतलाओ। सपन को आप झूठ मानते हो किस आधार पर और जागृत को सत्य मानते हो किस आधार पर, तो इसका कोई तर्क नहीं है, कोई भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि सो जाने पर दोनों के दोनों नहीं रहते। और वह नींद जिसको हम कहते हैं और जिसको मृत्यु कहते हैं वो भी नींद ही है। लोग कहेंगे एक दिन हम नहीं उठेंगे सोए हुए और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोज सोते हैं तो उठ जाते हैं, एक दिन नहीं उठे तो हमें क्या फर्क पड़ा, हमारी तो अनुभव वही रहेगा मौत में भी जो रोज का रहता है। बाकी कुछ लोग कहेंगे कि वो नहीं रहा, ये हो गया, कोई रोएगा, कोई कुछ करेगा, वो उनकी अपनी मर्जी, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस दिन नहीं भी उठेंगे उस दिन जागृत में जो हमने कमा लिया और स्वप्न में जो खो दिया क्या फर्क रह जाएगा दोनों में? या तो जागृत वाला हमारे साथ चला जाएगा तब भी हम कहें कि रास्ते में कहीं काम आना है, भाई स्वप्न वाला तो पीछे छूट गया, जागृत वाला हम साथ लेके चलेंगे, तब भी कोई बात बन जाए। लेकिन इसका कोई भी आप, क्योंकि इन दोनों में अंतर है नहीं, ये उपनिषद यही कह रहा है कि इन दोनों में कोई अंतर है नहीं, जो असली चीज है तत्व जो है जब उस पर नजर जाएगी उसको आप सोचेंगे तो ये उसी का विलास मात्र है, और वो तत्व जिसको हम चेतन कहते हैं उसने आपसे छूटना नहीं है, वो बस उसी की वजह से आप हैं, वो न छूट सकता है न आप उसको छोड़ सकते हैं। तो इसलिए जागृत में स्वप्न में भी उसी तत्व पर नजर रहे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए हर तरह की हम उसमें आनंद में ही रहेंगे, रस में ही रहे, क्योंकि जागृत में स्वप्न में उससे नजर हट जाती है, सुषुप्ति में उसका थोड़ी झलक मिलती है, लेकिन हम अज्ञान में रहने के कारण उसको ना तो पहचान पाते हैं ना उसकी ज्यादा चर्चा कर पाते हैं। और स्वप्न को भी हम महत्व तो कोई नहीं देते, हमारे लिए महत्व तो जागृत का ही कि यही सब है। शास्त्र कहता है कि जागृत को अधिक महत्व क्यों और स्वप्न को कम महत्व क्यों, तो ये बात उन्होंने इस उपनिषद के माध्यम से समझाई है कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, सुषुप्ति में केवल आनंदमय कोष काम करता है और इसीलिए उसको चेत भूख कहा, वहां भोक्ता चेतना है, चेतन ही उसका भोक्ता है। देखो इसमें भोक्ता और भोग्य का भी विवेक किया गया है। जागृत में हमारी बाहर की प्रज्ञा है, बाहरमुखी हमारी बुद्धि है, और जागृत के भोग स्थूल भोग है,